खुदावन के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। स्वयं हम खुदावन के जुड़ चुके हैं और अपनी रूहों को, अपने दिलों को खुदावन के कलाम को सुनने के लिए तैयार करें और खुदावन की हिकमत और जनाई चाहेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो उसकी प्रस्तुति शुरू और सच्चाई से करें। अपने अपने दिल की हालत का जायजा लें और खुदावन से उसकी हिकमत और दनाई मांगें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए, तेरे शुक्रगुजार हैं सारी रात की हिफाजत और निगेबानी के लिए, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन खुदा तेरे कलाम के लिए जो हमारा रहनुमा है, तेरे कलाम के लिए जो हमें खुदावन खुदा भेद की बातें सिखाता है। आज हम जो कुछ भी सीखें, हम सब के दिलों दिमागों सोचों ख्यालों पर तेरा ही अबर, तेरा ही कब्जा, तेरा ही कंट्रोल चाहते हैं। आज के दिन में हम सब की रहनुमाई और मददबान यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ एक हवाला निकालें पुराने अहदनामा में से, इम्साल की किताब उसका छठा बाब। खुदा का कलाम जो हमारी हदायत हमारी तरबियत के लिए बख्शा गया है, इसीलिए बख्शा गया है कि इंसान खुदा के बारे में जाने, इसीलिए बख्शा गया है कि खुदा की मोहब्बत के बारे में जाने, इसीलिए लिखा गया कि हम जाने के किस तरह एक दूसरे से मसीह की मोहब्बत करनी है, किस तरह एक दूसरे को माफ करना है, किस तरह इस जमीन पर जिंदगी बसर करनी है। क्योंकि हर एक खानदान में, हर एक घर में आप सब इसके गवाह हैं, आप सब कह सकते हैं कि हमारे घर में कोई ना कोई असूल, कोई ना कोई तरीकाकार है। कुछ लोग वक्त पर इकट्ठे होकर घर में रोटी खाते हैं, ये घर का एक असूल है। कुछ लोग दुआ सबसे पहले करते हैं इससे पहले कि खाना खाया जाए, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कुछ लोग अपने घर में ये वक्त बनाते हैं कि हर एक को इस वक्त पर घर में होना चाहिए ताकि दरवाज़ा बंद हो जाए। कुछ लोग और किस्म के असूल रखते हैं। सो हमारी ज़िंदगी में हम तरह तरह के असूल रखते हैं। इसी तरह बाइबल मुकद्दस भी हमें उन हकीकी बातों, उन असूलों के बारे में बयान करती है कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी किस तरह गुजारें। जिस तरह हम जिस्मानी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने बच्चों को हदायत करते हैं कि 10 बजे से पहले या 9 बजे से पहले घर होना चाहिए, वैसे ही खुदा का कलाम हमें हदायत करता है, हमें सिखाता है। और इसीलिए ये किताब खुदा का कलाम, जिसे किताब मुकद्दस, खुदा का मुकाशफा, खुदा का इल्हाम, खुदा का दम, खुदा के मुंह की बोली हुई बातें हमें बख्शी गई हैं ताकि हम रूहानी ज़िंदगी के बारे में जानें, ताकि हम जानें कि यीशु मसीह कौन है, ताकि हम जानें हमारा और यीशु मसीह का तल्लक क्या है, ताकि हम जानें खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से हमारे साथ क्या किया, ताकि हम जानें हम इस ज़मीन पर क्यों हैं। सो तमाम भेंटों, असूलों, वादों, नसीहतों और तरबियत की बातों का हमें इल्म कहाँ से मिलता है? खुदा के कलाम में से। सो आज मैं चाहता हूँ कि हम कलाम खुदा के इन असूलों में से और सच्चाइयों में से और हदायतों में से एक सच्चाई देखें, और खुदा ना के सिर्फ हमें आसमान और ज़मीन के वसीला से सिखाता है, ना के अपनी मोहब्बत के वसीला से सिखाता है, वो हर एक चीज़ को इस्तेमाल करता है कि हम जानें, हम सीखें उसकी मोहब्बत और उसके प्यार के बारे में, और फिर अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं और क्या हमारा मकसद है। और खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह, हिकमत का बादशाह, जिसने खुदा से दुआ की और खुदा ने कहा कि मांग, तो उसने क्या मांगी? हिकमत मांगी। उसने कहा कि खुदावन मुझे अकल और दनाई बख्श, और खुदा ने उसे दी। उसी के मुंह की बातें वो कहता है एमसाल छठा बाप उसकी छठी आयत में। उन लोगों से मुखातब है जो अपनी जिंदगी में सुस्त, लापरवाह, लाचार नहीं कह सकते, लापरवाह और सुस्त हैं, जो अपनी जिंदगी में बेतरतीबी से जिंदगी गुजारते हैं। सबकी वो रहनुमाई के लिए कहता है छठी आयत में, ए काहिल, चूंटी के पास जा, उसकी रविशों से रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन। खुदा का बंदा कहता है कि ए काहिल, सुस्त, लापरवाह और बेतरतीब बंदे, चींटी के पास जा। चींटी, जिसे हम कीड़ी कहते हैं, छोटी सी मखलूक है, गिनने में हमारे आगे कुछ भी नहीं, ताकत में कुछ भी नहीं, हमारे सामने वो एक छोटा सा जानवर है जिसे हवा उड़ा ले जाती है, जिसे बच्चे एक मिनट में मसल देते हैं, जिसे सर्दी एक मिनट में ख़त्म कर देती है, जिसे और बहुत सी दूसरी बातें क्या करती हैं, एक मिनट में मार देती हैं। तो खुदावन का बंदा सुलेमान कहता है कि मेरे बंदो सुनो और ये बात सीखो कि चींटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन। उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन। रविशें यानी कि उसका तरीका कार देखो, उसका चलना देखो, उसके जिंदगी के बसर करने के तरीके कार को देखो कि वो किस तरह जिंदगी बसर करती है, और दानिशमंद बन। आप सोचते होंगे कि खुदा का कलाम क्यों कह रहा है कि हम चींटी के पास, उस कीड़ी के पास जाकर उससे अकल हासिल करें। मैंने आपको कहा कि ये किताब मौजज़ाना किताब है, ये किताब खुदा का कलाम है, ये किताब हमारे दिलों पर चोट करती है किसी भी तरीके से, ताकि हम सीखें। और खुदा का कलाम कहता है कि चींटी के पास जा, उसकी रविशों पर, उसके चलने चलाने से, उसके बैठने उठने से, उसके तरीकाकार से अकल और दनाई हासिल कर, तो तू दानिशमंद बनेगा। और सातवीं आयत में क्या लिखा है, क्यों खुदा का कलाम, क्यों खुदा के बंदा सुलेमान ने यह कहा, जो बावजूदे के उसका ना कोई सरदार। सरदार किस लिए होते हैं? मुल्क को चलाने के लिए बहुत दफा सरदार होते हैं, जंगी सरदार होते थे, बहुत दफा अपना किसी ना किसी जमायत के सरदार होते थे। जैसे हम कह सकते हैं कि नए अहदनामा में यीशु मसीह के पास एक यहूदियों का सरदार आया जिसका नाम निकुदीमस था, यानी कि लोगों के ग्रोह का रहनमा, या उनका क्या कह सकते हैं कि इज्जतदार बंदा। तो खुदावंत का कलाम कहता है, खुदावंत का बंदा कहता है कि चींटियों का बावजूद इस जगह इस बात को देखते हैं कि उनका ना कोई सरदार है जैसे इंसानों के सरदार हैं ग्रुपों में, शहरों में, बहुत दफा गांवों में, जिसे हम कहते हैं कि कोई इज्जतदार बंदा या मालदार बंदा होता है जिसके पास सारे अपने मामले लेकर जाते हैं कि हमारा मामला दुरुस्त किया जाए, हमें ये किया जाए, हमारे ये मसले की जो बात है इसे हल किया जाए। चींटियों के ना कोई सरदार है, ना नाजर, ना कोई और नाजर या उन पर नजर करने वाले, उनका निजाम चलाने वाले, जैसे कहते हैं कि किसी को किसी के निजाम पर मुकरर कर देना, ना उनका कोई नाजर है, ना हाकम। मुल्कों को चलाने के लिए हाकम किस लिए होते हैं? जिसे कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट कहते हैं, बादशाह कहते हैं, थानों में बड़ा अफसर डीएसपी कहते हैं या उससे भी बड़ा अफसर होता है। शहरों में हाकम होते हैं जिनको कहते हैं कि वो इख्तियार वाले होते हैं। खुदा का बंदा कहता है ना उनका कोई सरदार है, ना नाजर है, ना हाकम है, लेकिन फिर भी वो कीड़ी हमें क्या सिखाती है। जो पैगाम जिस बात पर हम गौर करना चाहते हैं वो ये है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है। कीड़ी के पास खुदा का बंदा कहता है जाओ और अकल और दनाई हासिल करो। ना वो किसी से सीखती है, ना कोई उसे कहता है कि ऐसे कर, ना वो कोई हुक्म सुनती है, बल्कि वो खुद जानती है कि उसकी जरूरत क्या है। तो कीड़ी क्या करती है गर्मी के मौसम में? आपके घरों में आपकी दीवारों पर कीड़ियों की दीवार देखते हैं ना, बहुत बड़ी लाइन बनी होती है, और हम दवा दव क्या करते हैं, बहुत दफा उस सुराख में हल्दी या मिर्ची डालते हैं ताकि कीड़ियां भाग जाएं, या कोई और काम करते हैं, स्प्रे करते हैं, दवाई फेंकते हैं कि ये कीड़ियां कहाँ से आ गईं। अगर दोबारा आने वाली गर्मी में खुदा हमारी हयाती करे, देखें तो उन कीड़ियों से सीखें कि उनकी लाइन होती है और उनकी लाइन टूटती नहीं। खुदा का कलाम यही कहता है कि उनकी एक तरतीब है, उनका एक मकसद है, उनका जीने का एक मतलब है, और उससे सीखो कि गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती हैं। क्यों? उन्हें पता है वो छोटी सी मखलूक है, सर्दी में काम नहीं कर सकती, गर्मी में अपनी सारी खुराक जमा कर लेती है और फसल के कटने के वक्त अपनी खोरिश जमा करती है। हम इंसान भी ऐसा ही करते हैं, जब खुराक जमा करनी होती है, जो लोग जमीन में या फसलों पे काम करते हैं वो क्या करते हैं, कटाई के वक्त अपने लिए दाने इकट्ठे कर लेते हैं ताकि उनके गल्ला में, उनके पड़ोले में दाने हों जिससे वो खा पी सकते हैं। तो इस बात से हम क्या सीख सकते हैं? हमें सीखने की जरूरत है कि हमें खुदा ने हाकम, हमें खुदा ने नाजम, हमें खुदा ने हुकूमत करने वाले मुकर्रर किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो हाकमियत की बात है, जो हिकमत की बात है, कि खुदा हमारा हाकम है। हमें अपनी जिंदगी में इन चींटियों की तरह इस जरूरत को महसूस करने की जरूरत है, जैसे वो जानती हैं कि खुराक के बगैर वो मुर्दा हैं, हम भी। खुदा के साथ अगर रिश्ता ना होगा तो हम भी रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। अगर खुदा के कलाम की रोटी हम अपनी जिंदगी में जमा ना करेंगे तो हम भी भूखे और बंजर जमीन की तरह हैं। हम इन चींटियों से यही बात सीख सकते हैं। आज हमें अपनी जिंदगी में अपनी हालत को देखने की जरूरत है कि हम कैसे हैं। क्या हम दूसरे लोगों की तरह तो नहीं जो कहते हैं कि साल में एक दफा, या जब मुसीबत आई तब, या कोई मेहमान आ गया तो उसे खुश करने के लिए या फिर दिखावे के लिए। दुनिया में बहुत किस्म के लोग पाए जाते हैं, इसलिए हमें सीखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी किसी के लिए मिसाल, किसी के लिए बरकत का बायस है, या फिर कोई कहता है कि छोड़ो परे, क्या बात कर दें। क्योंकि खुदा हर एक अमल को, हर एक बात को लेकर दूसरों के लिए बरकत का बायस ठहराता है। कीड़ियों के बारे में कौन सोचता है? कोई भी नहीं। छोटी सी मखलूक, मार दो इसे, एक सेंकंड में हम उसे मसल देते हैं, लेकिन खुदा उसे बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है कि उनसे सीखो। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है। खुदा का बंदा अय्यूब इस जरूरत को महसूस करते हुए इस बात की तरफ वो बड़े गौर से और बड़े बड़े ही अच्छे तरीके से ध्यान कराते हुए अपनी जिंदगी में जरूरत को महसूस करता है। जैसे हर लोग हर दौर में हर एक अपनी खुराक जमा करता है, वो भी इस तरफ इशारा करता है। मेरे साथ एक हवाला निकालें, पुराने अहदनामा में से अय्यूब की किताब उसका 23वां बाप, 23वां बाप उसकी 12वीं आयत। अय्यूब यहाँ पर खुदावंद खुदा के बारे में बात कर रहा है, अपने मामले के बारे में बात कर रहा है। वो दुख से गुजर रहा है, उसके दोस्त लगातार उसे उसे मलामत के और झूठ के और उसे नीचा करने के सूए खबो रहे हैं। आपको याद होगा कि जब बैल ना चले तो उसके लिए एक सूआ बना होता है, या हाथी, तो उसके कान के पीछे वो सुआ चबोते हैं ताकि हाथी सीधा चले। उसके दोस्त उसके साथ ऐसा ही कर रहे हैं, उसे बुरा भला कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि तेरी वजह से ही सब कुछ तेरे साथ हुआ। तो खुदा का बंदा अय्यूब 23वां बाप उसकी 12वीं आयत में कहता है कि मैं उसके लबों के हुक्मों से हटा नहीं। वो खुदा के बारे में कहता है कि मैं खुदावन के मुंह की बातों से नहीं हटा, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। जखीरा, जैसे हम कहते हैं कि जमा करना, पड़ोले में रखना, मट्टी में रखना या फिर गोदामों में रखना। वो कहता है कि मैंने यीशु मसीह के मुंह की बातों को, खुदा के मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया, जिसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 4 बाब उसकी 4 आयत में, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, हर वो बात। सो हमें अपनी जिंदगी में, यहां देख सकते हैं कि एक कीड़ी मेरे टेबल पर फिर रही है, छोटी सी है, लेकिन उससे पता है कि उसे क्या करना है, उसे पता है कि उसकी जरूरत क्या है, और उसे पता है अगर वो खुराक जमा ना करेगी तो वो कभी भी सर्दी के मौसम को उसमें उसका क्या है बचाव नहीं होगा, वो मर जाएगी। और हमारी छुपने की जगह, जैसे कीड़ियों की छुपने की वो सुरंग होती है, हमारे छुपने की जगह यीशु मसीह है, हमारे बचने की जगह यीशु मसीह है। खुदा का बंदा कलाम में कहता है, जबूर नवीस में, कि मैं अपने सब दुश्मनों से भाग कर तेरे पास आया हूं ताकि तुझ में पना लो। पालूस रसूल ने ऐसा ही किया, अपनी जिंदगी में वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया पना लेने के लिए। मेरे साथ एक हवाला निकालें, हम आज इस हवाले पर खत्म करेंगे, जबूर 18। जबूर 18, जब दाऊद अपनी जिंदगी में मुश्किलात से घिरा हुआ था, जब वो जानता था कि उसकी जिंदगी उस चौकट पर, उस लम्हे पर पहुंच गई है कि उसके दुश्मन उसे मार डालेंगे, उसे तबाह कर देंगे, उसके छुपने की कोई और जगह नहीं, उसकी कोई और उम्मीद नहीं, उसका कोई और हौसला नहीं। हो सकता है आप भी ऐसे हालात में से गुजरें, और हो सकता है आप गुजर रहे हो कि आप सोचते हो कि अब उम्मीद बाकी नहीं, हो सकता है बीमारी में है, हो सकता है कि माली मसला है, हो सकता है कि रूहानी मसला है, हो सकता है कोई और खानदानी लड़ाई है, या किसी और किस्म की बीमारी, या किसी और मुश्किल का सामना है। आप खुद जानते हैं, मैं नहीं जानता। और आप सोचते हो कि मेरी उम्मीद जाती रही, मैं क्या करूं, क्या होगा, कैसे ये गुजर बसर होगा। तो खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, जब उसके दुश्मनों ने उसे घेरा हुआ था, वो कहता है, ऐ खुदावंद मेरी कुवत तुझसे है, ऐ खुदावंद मेरी कुवत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं, मोहब्बत रखता हूं। दूसरी आयत में लिखा है, खुदावंद मेरी चट्टान, मेरा किला, मेरा छुड़ाने वाला है। चट्टान उस दौर में और आज के दौर में भी छुपने के लिए, लड़ने के लिए और दूसरी बहुत सी बातों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। किला, जैसे हमारा घर है, दूसरे दौर में, पिछले दौर में किले होते थे जहां पर वो छुपते थे। कहता है खुदावन मेरे छुपने की जगह है। जैसे कीड़ियों के छुपने की, सर्दी से बचने की जगह क्या है, उनकी सुरंग है जो आपकी दीवार में हो सकता है, आपके घर में किसी ना किसी नुक्कड़ में हो, वो छोटी सी जगह जिसमें आप नहीं घुस सकते। वैसे ही खुदा हमारा किला है जहां पर दुश्मन हम पर वार नहीं कर सकता। तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है, खुदावन मेरी चट्टान, मेरा किला, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा खुदा, मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर, मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुरज, मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। आए हम खुदावन के हुजूर झुकें और उस खुदावन को हर रोज पुकारें।